जो फलसफा है इसके क्या मायने हैं?
ये फलसफा है जबर व कदर जो है, असल में ये दो नजरियात हैं। एक नजरिया ये कहता है कि इंसान मजबूर है, ना वो अपनी मर्जी से पैदा हुआ, ना अपनी मर्जी से ग्रो कर रहा है, ना अपनी मर्जी से जिंदा रह सकता है, ना अपनी मर्जी से मर सकता है। यानी वो मजबूर महज है, इसको जबर कहते हैं। यानी कि हम जबर की हालत में हैं, कुदरत जबर कर रही है हम पे, हमें अपनी मर्जी से चला रही है। दूसरा कहता है, दूसरा फलसफा ये है कि नहीं, हम पूरी तरह खुद मुख्तार हैं। यही सवाल जब हजरत अली से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया पूछने वाले से, उसने कहा कि जी हम मजबूर हैं या हम आजाद हैं? तो हजरत अली ने उनसे फरमाया कि आप अपना एक पांव उठाएं। उन्होंने एक पांव जमीन पे रखे थे, एक पैर उठा दिया। उन्होंने कहा अब दूसरा भी उठाएं। उसने कहा ये तो नहीं मुमकिन। उन्होंने कहा बस यही, यानी इंसान कुछ मामलात में खुद मुख्तार है, आजाद है, और बाकी मामलात में वो मजबूर है। हजूर कलंदर बाब औलिया ने मकतूबे गरामी में ये बात वाशगाफ लिखी है कि इंसान को नीयत का इख्तियार है, यानी वो जो चाहे चूज कर सकता है। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद अली मुकाम है, इन्नमल आमाला बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब लफ्ज नियत को हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। नियत का मतलब है चूज करना। देखे ना, आप हर कदम पे, आपके सामने दो या तीन रास्ते होते हैं। आपको किसी ने सलाम किया, वालेकुम सलाम कहते हैं। अगर मूड नहीं हो, आप जवाब नहीं देते, तो ये चॉइस किसकी हुई? तो नियत का इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया हुआ है। किस चीज का इख्तियार? नियत का, यानी कि चॉइस। चॉइस इंसान की है, आमाल और आफाल जो है वो इंसान की चॉइस पे हैं। बाकी मकदारों का तायुन अल्लाह ने खुद कर दिया, वहां पे इंसान मजबूर है। लेकिन जब इंसान अपने मुकाम को, अपनी हैसियत को, अपनी सलाहियतों को जान लेता है और ये समझ जाता है कि मैं, मुझे अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं जो बतौर नायब मुझे हासिल हैं, तो जब वो उन सलाहियतों का इस्तेमाल करता है तो वो कई ऐसे काम भी कर सकता है जो बज़ाहिर आम इंसानों के लिए मजबूरी कहलाते हैं। कुरान में इसके जा बजा तज़किरे मिलते हैं। मसलन आग का काम जलाना है, अब अगर कोई आपको आग में डाल दे तो आप तो जल जाएंगे, यहां पे इंसान मजबूर है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने क्या साबित किया कि आग जलती तो रही लेकिन ठंडी हो गई, बुझी नहीं। उन्होंने कुल ना या नारो कूनी बर्दा, ठंडी हो जा, यानी अपनी हिद्दत खत्म कर दे, यानी जलाने का अमल तर्क कर दे। रोशनी और रंग जो हैं, ये दो चीजें, दो सिफात उसकी बरकरार रखी, एक सिफत को साकत कर दिया। तो इंसान अगर अल्लाह का ताबे फरमान बन जाए, अंबिया कराम की तर्ज फिक्र से आरास्ता हो जाए, तो उसकी नियतों में ظاہر ہے ریفائنمنٹ آ جاتی ہے, اس کی نیتیں اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں, لہٰذا وہ اللہ کے نظام کو سمجھ کے جب کھیلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ان پہ حاوی ہے. حضور قلندر بابا اولیاء ہی کا دوسرا جملہ جو ہے کہ انسان اپنے انر میں بالکل آزاد ہے لیکن معاشرے کی رسی سے بندھا ہوا ہے. تو یہ ہے فلسفہ جبر و قدر پہ خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بین ہے, کچھ معاملات میں انسان مجبور ہے اور کچھ معاملات میں آزاد ہے. کن معاملات میں آزاد ہے؟ چوائس, نیت اس کی ہے, وہ کیا چوز کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ اسی کی جزا اور سزا ہے. بات واضح ہو گئی سر؟
السلام علیکم سر.
جی
میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے.
جی ارشاد
سر. مطلب ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب برا ہو جاتا ہے, کسی نے کوئی کپڑے بھی پہنے ہو تو وہ بھی پرنٹ, وہی سارا سیم سچویشن ایسی ہوتی ہے. تو سر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ ریکارڈیڈ ہے, یعنی آگے کی پل ہم نے دیکھی. تو سر ایسے صورتحال میں دعا کا کیا کنسپٹ ہوا؟
پہلی اس میں دو تین باتیں وضاحت طلب ہیں, اگر اجازت ہو تو میں ذرا بات ابتدا سے شروع کر دیتا ہوں. دیکھیں نیند میں اور بیداری میں کیا چیز مشترک ہے؟ حواس. دیکھیں نا آپ دیکھنے کا عمل جو ہے نیند میں بھی کر رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی کر رہے ہیں, لیکن فرق کیا ہے کہ ایک جگہ آپ سیریل ٹائم میں کر رہے ہیں, دوسری جگہ آپ نان سیریل ٹائم میں. یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ حواس. اب رہ گئی بات کہ جی ہم خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ منو ان پورا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ آگے دیکھ سکے. مثلا میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں جانتا کہ اگلا جملہ کیا کہوں گا تو کیا ہوا؟ قصور کس چیز کا ہوا؟ میری توجہ کا. اگر دیکھیں نا کوئی بھی بندہ جو آگے دیکھ سکتا ہے وہ بہت احتیاط سے کام کرتا ہے, جو آگے نہیں دیکھ سکتا وہ رکتا ہی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. کیا کہتے ہیں لفظ؟ وقوف نہیں ہے اس کو, یہ رک نہیں سکتا. کیوں نہیں رک سکتا؟ کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ دیوار کھڑی ہے تو ٹکرا جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حواس کی وہ رفتار جو نیند میں طاری ہوتی ہے وہ ہمارے بیداری کے حواس سے 70 گنا زیادہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بیداری میں رہتے ہوئے اگر ایک حد تک دیکھتا ہے تو خواب میں وہ 70 گنا زیادہ دیکھتا ہے. عرض سمجھ آپ کو سمجھ آئی میری عرض؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیند میں چونکہ ہمارے حواس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اس لیے کبھی کبھی اس کی رینج ہمارا شعور نوٹ کرتا ہے. وہ رینج جو شعور نوٹ کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بیداری کے حواس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ہمیں ہونے والے واقعات کی تصویری شکل پہلے دکھا دی جاتی ہے. دیکھیں نا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں پہلے وہ سوچتے ہیں پھر وہ عمل پذیر ہوتا ہے. نشتہ لائٹ یہ بات واضح ہو گئی؟
جی سر.
यानी देखें हमने क्या तमाशा मचाया हुआ, इंसान को 11,500 सलाहियतें हासिल हैं, या यूं कहिए कि 11,500 हवास अता किए गए हैं। हमने क्या तमाशा मचाया, 11,495 हवास को हम छठी हिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं कि इसकी छठी हिस बड़ी तेज है। गौर करें, हम 5 हवासों से बेदारी में काम लेते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। पता नहीं कितने हवास काम कर रहे होते हैं आपको। देखें मैं एक मिसाल देता हूं, आपको वक्त के गुजरने का एहसास होता है? ये कौन सी हिस है? आप बैठे हैं ना, अगर आपके पलंग के या कुर्सी के एक पाए के नीचे आप एक सिक्का रख दें, जो ही अगला बैठेगा कहेगा कुर्सी टेढ़ी है। गौर करें, ये कौन सी हिस है? ये जो बैलेंस की हिस है, इसको आप क्या कहेंगे? वक्त की हिस को क्या कहेंगे? आप किसी की शक्ल देख के कहते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा बंदा नहीं है, ये कौन सी हिस है? आप किसी को देख के एकदम फरेफ्ता हो जाते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छा बंदा है, ये कौन सी हिस है? ये इन 5 हवासों में जवाब है नहीं। हम चूंकि गौर व फिक्र नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, हमने क्या किया, 11,495 का नाम रख दिया छठी हिस। इसकी छठी हिस बड़ी तेज है। अब आपको वाजे हो गया, मैंने ये कोशिश की कि आपके
सर, हम तो सिर्फ 5 आवाज से वाकिफ है, शुरू से यही बताया गया ये 5 आवाज है और छठा जो छठी।
चलें आज आखिर में मैंने भी अर्ज कर दिया। आप शुरू से जो बात समझ, देखे ना हमारा शऊर कहते हैं ना महदूद है, तो महदूदियत क्या है, किसी ने बताया नहीं। अब ये हजूर कलंदर बाबा औलिया ने बताया पहली दफा ये कुरान लौह कलम में कि इंसान को इतनी सलाहियतें हासिल हैं। उसकी वजह यह कि इंसान के अंदर अल्लाह की सिफात का अक्स काम कर रहा है। अब अल्लाह की हर सिफत इंसान के अंदर एक सलाहियत बन गई, एक हिस बन गई। मसलन अल्लाह बसीर है, तो मैं और आप नहीं, सारी मखलूक को अल्लाह ने सिफत बसारत का अक्स दिया, वो सारे देखते हैं। कुत्ता भी देखता है, बिल्ली भी देखती है, शाहबाज जो है, ईगल जो है, वो कितनी दूर से देखता है, डबल फोकसिंग होती है, वो दूर भी देख रहा है और जूम इन करके भी देख रहा है। गिद्ध भी इसी तरह, वो इतनी बुलंदी से देख लेता है कि वो जानवर मुर्दार है। शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट रेज देखती है। ये अल्लाह की सिफत बसारत देखें इंसान में कितनी महदूद है। अल्लाह ने, अल्लाह की खुद अपनी सिफत कितनी लामितनाहियत, लामितनाही सिफत है उसकी। मैं अर्ज कर देता हूं, जरा तवज्जो दीजिए। मैं एक वक्त में, एक सिमत में, एक फासले पर किसी एक चीज को देखता हूं एक वक्त में। अल्लाह रब्बे करीम की बसारत का क्या कमाल है, अल्लाह रब्बे करीम तमाम औकात में, तमाम सिमतों में, तमाम फासलों पर तमाम चीजें देखते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे देखने की तर्जें बहुत ही महदूद हैं। हमने कोशिश ही नहीं की इनको बढ़ाने की। इसी तरह अल्लाह समी है, तो अल्लाह समात रखता है, तो उसने अपनी मखलूक को ये हिस्से समात, यानी उसकी सिफत का अक्स जब मखलूक में जाहिर हुआ तो हम कहते हैं मखलूक समात रखती है। अब असल समी कौन है? वो तो अल्लाह है। ये अल्लाह की एक सिफत है समी होना। इसी तरह जब हजूर कलंदर बाबा औलिया ने किताब लौह कलम में ये बात फरमाई कि अल्लाह के 11,500 नाम हैं, इस्मा इलाहिया की तादाद 11,500 के करीब है, इसम क्या होता है, किसी ने किसी सिफत का नाम रखा ना, तो जब आप गौर करते हैं तो जितने आपकी जबान में एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे अल्लाह की सिफात ही तो हैं। ग्रामर में एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सिफत को। तो जब सिफात कहते हैं तो हम पता नहीं कहां खो जाते हैं, एडजेक्टिव्स नहीं सोचते। तो जब आप इस तरह सोचना सीख लेंगे तो आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर अल्लाह की सिफात का अक्स है, लिहाजा अब गैब जो है वो मेरे और आपके लिए गैब है, अल्लाह के लिए गैब नहीं है। तो जब आपके हवास की रफ्तार तेज हो जाती है तो अल्लाह रब्बे करीम अपने इल्म में से आपको कोई आगाही अता फरमाते हैं। हम इसका नाम छठी हिस रख देते हैं, ये नहीं समझते कि भाई अल्लाह ने करम किया, हमें चीज दिखाई। किसने दिखाया ख्वाब आपको, क्या आपने खुद अपनी मर्जी से ख्वाब देखा? द आंसर इज नो, हम ख्वाब अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, इसलिए कि हमने सीखा नहीं है। ये बात हजूर कलंदर बाब औलिया की तालीमात की रोशनी में वाशगाफ कही गई है कि जागते में ख्वाब के हवास तारी करो। क्या मतलब है, कह रहे हैं जागते में ख्वाब देखो या ख्वाब के हवास में बेदारी के हवास का इस्तेमाल सीखो, यानी कि सोते में भी बाशऊर रहो। ये सब बातें किस तरफ जा रही हैं कि हमें अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को, जो कि असल में उसकी सिफात हैं, उनका इरफान हासिल करना है, उनसे वाकिफ होना है, उनको बरत के दिखाना है। अगर आप इसे किसी भी आम बंदे से बात करेंगे वो कहेगा जी हाँ एक बंदे की छठी हिस तेज है, फिर आगे वो ये नहीं बता सकता कि उसने एग्जैक्टली ये कैसे देख लिया, वो मिनोअन जो बात वहां देखी वो मिनोअन यहां कैसे पूरी हो गई। असल में हवास वही है, उन्होंने वहां एक चीज को देखा, यहां पे फिर उसकी तस्दीक की। मादी जोन में यानी पहले एक फिल्म बनी, फिर उसका डिस्प्ले मादी जोन में हुआ। ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि वो एक रिकॉर्ड पे नजर पड़ गई, ठीक हो गया।
सर जो
हजूर
औलिया के फरमान के मुताबिक कि कुरान पाक को वही की तर्जों में समझना है,
बेशक
सर ये जरा वजाहत फरमा दें।
देखें मैं और आप शौरी निजाम में बंधे हुए हैं, मुआशरे की रस्सी से बंधे होने का क्या मतलब है, शौर में है, शौर से ऊपर है इल्हाम, इल्हाम से ऊपर है वही। देखें ये एक आयत है ना, फलहामहा फजूरहा व तकवाहा, अल्लाह कहता है कि मैं इल्हाम करता हूँ फजूर के बाबत भी और तकवे की बाबत भी, ठीक हो क्या। यानी के इल्हाम जो है वो सबको अल्लाह करता है। अब वैसे तो वही के बारे में कहा मैं शहद की वही को, मक्खी जो है शहद की मक्खी को वही करता हूँ, फिर कहा कि जमीन कहेगी माँ ओहा, मुझे जो वही किया गया मैंने वो किया। गौर करें, अब वही का असल में मतलब है अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का बराह रास्त पैगाम जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे वही कहा गया। अब हमने मखलूक होने के नाते ये हुनर सीखना है कि हम अपने खालिक अपने मालिक अपने परवरदिगार अपने रब की बात को उस तरह समझें जिस तरह वो चाहता है। हमने क्या तमाशा मचाया हुआ है, हम अल्लाह की बात को उस तरह समझते हैं जिस तरह मेरा जी चाहता है या जिस तरह मुझे आपने बताया। गौर करें, मैं अपने कहे को हतमी समझ के उस पर कारबंद हूं या किसी के बताए हुए पे अमल पैरा हूं या मैं अल्लाह की बात को उस तरह समझूं जिस तरह अल्लाह फरमा रहा है। ये तीन दर्जे हो गए। जब आप अपनी मर्जी कर रहे हैं ये क्या है, ये शऊर है। जब आप लोगों की सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये शऊरी निजाम है। लेकिन जब आप अपने अंदर की बात सुनते हैं तो ये इल्हाम है, ये इल्हामी तहरीर है। अब देखें ना कलंदर बाब औलिया की ये तहरीर इल्हामी तहरीर है, ये किसी किताब से नहीं लिखी उन्होंने। हजूर मुर्शिदे करीम ने मुझे ये बात फरमाई कि कुरान के बाद लौह कलम पहली तसनीफ है, बाकी हर किताब तालीफ में आती है। तसनीफ और तालीफ में क्या फर्क है? तालीफ का मतलब होता है जमा करना, यानी चार बंदों की सुनी हुई बात को आपने एक जगह जमा कर दिया, ये तालीफ हुई। आप कहते हैं मैंने किताब लिखी। लेकिन जब बात अल्लाह आपके दिल में डाले और आप एक बात को जो उससे पहले कभी किसी ने ना बताई हो वो बता रहे हो, यानी अल्लाह की बताई हुई बात को अगर आप नरेट कर रहे हैं तो ये तसनीफ हुई। और अगर अल्लाह की बात को आप रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो वही हुई, जैसे कि कुरान। अब कुरान वही है, वही को समझने के लिए हम शऊरी जोन से निकले ही नहीं, इल्हाम दो जोन में दाखिल नहीं हुए, फिर इल्हाम से ऊपर उठ के वही की तर्जों तक तो हम पहुंचे ही नहीं, तो कुरान कहां से समझ आ जाएगा। इसलिए देखें हजूर कलंदर बाब औलिया ने क्या किया कि पूरी किताब लौह कलम लिख कर हमारा जहन इल्हामी तर्जों में इस तरह सेट कर दिया कि हम कुरान को समझ सकें। आखिरी जुमला क्या है उस किताब का कि अगर हम वसी तर इत्तलात वसूल करना चाहें तो हमें कुरान की तरफ रजू करना होगा। हाँ या नहीं? यानी लौह कलम ने तान कहां तोड़ी कि कुरान की तरफ रजू करें, यानी इल्हामी तर्जों में हमारा जहन इस काबिल बना दिया कि हम वही को समझने के काबिल हो जाएं। मसलन देखें ना, हम आसमान समावात और अर्ध का तर्जमा आज तक जमीन और आसमान पढ़ते रहे। उन्होंने फरमाया कि आसमान ये समावात जो है ये शऊर के दर्जे हैं, ये जमीन जो है ये अर्ध है, ये स्क्रीन है जिस पे कोई चीज डिस्प्ले हो रही है। गौर करें, जब बात को आप शौरी तौर पे समझ रहे हैं तो आप जमीन और आसमान ये जो मादी जोन में बाहर दिख रहे हैं उनको कह रहे हैं, लेकिन जब आप इल्हामी तर्जों में देखते हैं तो फिर आप इनर में देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो इनर में शऊर के दर्जों को समावात का है और उसके डिस्प्ले को अर्ध का है, यानी स्क्रीन, यानी मक्खी भी एक स्क्रीन है, मच्छर भी एक स्क्रीन है, एक अर्ध है, गुलाब जिस पे गुलाब के तसव्वुरात डिस्प्ले हो रहे हैं वो भी एक अर्ध है। बात वाजे हो गई? ये बात वाजे हुई। मैंने पूछा कि शऊर के दर्जे हैं, इल्हाम के दर्जे हैं और उसके बाद वही का नंबर है। ठीक हो गया?
शुक्रिया सर। जी सर ठीक हो गया, शुक्रिया।
माशाल्लाह
सर, मैं क्वेश्चन करूं आपसे?
जी जी जरूर, जी जी फरमाइए।
अच्छा ये है कि अगर इंसान रूहानी की सतह से तरक्की करके रूह इंसानी की सतह को पा लेता है तो उसकी जिंदगी इंसानी इकदार के मुताबिक हिवानी सतह से बुलंद हो जाती है, और अगर इंसान अपनी रूहानी तरक्की की तरफ मतवजा रहता है और अपने शोर को बढ़ाने पिलाने और इसकी तरक्की देने की बरकोशा रहता है और रूह आत्म की सतह पर पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसको उन अलूम से नवाजता है जिसको इल्मुल अस्मा कहा जाता है। अब यहाँ पे इल्मुल अस्मा की तफसील से मुझे बताएं।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या अर्ज किया कि हम शौरी दर्जे में हैं, ये हैवानी सतह है। जब हम इल्हामी दर्जे पे पहुंचते हैं तो ये जहन का दर्जा है या रूहे इंसानी का दर्जा? अब ये पहले तो रूह हैवानी इंसानी और रूह आजम को अच्छी तरह समझ लें, फिर मैं इल्मुल अस्मा की तरफ आता हूँ। ठीक है, देखें हमें एक मादी जिस्म दिया गया है और ये तीन और हीन से बना है, यानी मतान इलाहीन एक थोड़ी सी मुद्दत है, 50 साल या 100 साल। तीन का मतलब है कीचड़, गिलाजत, कीचड़ और वो भी गिलाजत वाला। अब ये रूहे हैवानी की सतह पे हम क्या हैं? हीन और तीन, हाँ या नहीं? अब इसके बाद इंसानी सतह क्या है कि हम वो काम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। जानवर क्या नहीं कर सकते, सोचें जरा, ईजाद नहीं कर सकते, गौर व फिक्र नहीं कर सकते, किसी चीज में तब्दीली नहीं कर सकते, इख्तरा नहीं कर सकते। इख्तरा और ईजाद यानी आलात नहीं बना सकते, औजार नहीं बना सकते, हथियार तो बिल्कुल भी नहीं बनाते, उनमें नेगेटिविटी नहीं है, वो दूसरे को मारना नहीं चाहते। इंसान ने अपनी जहनी सलाहियतों को भी हथियार बनाने पे जाया किया, यानी ईजाद किया तो क्या किया, बम, गोला, हैं, टैंक, फिर एटम बम तक पहुंच गए। अब गौर करें, छोड़ दें इसको। अब अगला दर्जा है रूह आजम का, जिसको मैंने कहा कि इस दर्जे पे वही समझ आती है, ये जो अभी बात हो रही थी, शऊर, इल्हाम और फिर वही। जब आप अल्लाह की इंस्पायरेशन को कबूल करते हैं तो ये इल्हाम हुआ, यानी इंसानी सतह पे जब आप गौर व फिक्र करते हैं, किसी नई चीज का ख्याल आपको आता है तो कौन देता है ये नया ख्याल? अब ग्राहम बेल को ये बात कहां से समझ में आई कि भाई फोन बनाना चाहिए, टेलीफोन बनाना चाहिए? गैलीलियो को दूरबीन बनाने का ख्याल कहां से आया? आर्किमिडीज को ये जो लॉ ऑफ वो डेंसिटी का उसने जो कानून बताया, वो उसे कहां से मिला? वो तो नहा रहा था। गौर करें, देखिए ये है रूह इंसानी का दर्जा, ठीक है, लेकिन रूह आजम क्या है? वहां पे बात बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अता होती है, अल्लाह खुद अता करता है, उसे वही कहते हैं, ठीक है, रूह आजम के दर्जे के बंदे को। अब उस दर्जे पे इंसान क्या करता है कि वो वसाइल के बगैर काम कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाता है। जैसे कुरान में हमें हजरत ईसा का वाक्या पढ़ने को दिया गया, बताया गया क्या कि वो गंजे के सर पे हाथ फेरा, उसके बाल हो गए, अंधे की आंखों पे हाथ फेरा, उसकी मादरजाद अंधा जो पैदाइशी अंधा, उसकी आंखें काम करने लग पड़ी। अब आप गौर करें, उन्होंने कोई तेल इस्तेमाल किया, कोई ऑपरेशन किया, कोई दवाइयां खिलाई, कुछ भी नहीं किया, मादी वसाइल के बगैर कैसे काम किया? ये है रूहे आजम का दर्जा, ठीक है। कुरान चाहता है कि आप ये सारे अलूम सीखें, लेकिन उसके लिए आपको पहले शऊर से उभर के अपने जहन से काम लेना तो आना चाहिए ना। अब जहन से काम लेने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका क्या है? कि आप करने से पहले सोचें, ये अंग्रेजी में जुमला कहा जाता है ना कि लुक बिफोर यू लीप, उर्दू में कहते हैं पहले तो लो फिर बोलो, यानी गोया ये जहन से काम लेने का तरीका हुआ, हाँ या नहीं? अब आ जाएं इल्मुल अस्मा पे, अब आ गई बात इल्मुल अस्मा की, यहां तक बात वाजे हो गई आपको? अब इल्मुल अस्मा ये हैं कि अल्लाह रब्बे करीम ने आपके अंदर कुछ सलाहियतें अपनी रूह में से फूंकी। क्या फरमाया? वनफख्तु फीहि मिनर रूही, अपनी रूह में से कुछ फूंका। अपनी रूह नहीं फूंकी। अब जो रूह में से सलाहियतें आदम को मुंतकिल की, उन सलाहियतों के इस्तेमाल के इल्म का नाम है इल्मुल अस्मा। क्या अर्ज किया मैंने कि जो सलाहियतें, जो सिफात अल्लाह रब्बे करीम ने आपको अता की, उन सलाहियतों के, उन सिफात के इस्तेमाल का हुनर और गुर वो भी अल्लाह ने सिखाया, उस इल्म का नाम है इल्मुल अस्मा। अब इसकी लफ्जी तशरी सुन लीजिए, इस्म किसे कहते हैं, नाम को, नाम क्या होता है, जाहिर है किसी चीज का, किसी जगह का, किसी खूबी का, किसी खामी का नाम है ना। हम कहते हैं ये बंदा बड़ा गुस्से वाला है, क्या कह रहे हैं, गुस्सा जो है लफ्ज, ये भी तो एक सिफत है ना, लेकिन एक नेगेटिव सिफत है। अब उसके इस्तेमाल से मना किया। अब इसी तरह नेकी है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें जिनके हमने नाम रखे हुए हैं, ये सब क्या है, इसम, नाम को कहते हैं। तो नाम किसके रखे हैं, सलाहियतों के, आपके अंदर जो सिफात हैं अल्लाह की उनके नाम है, उनका इल्म सिखा दिया। जी ठीक हो गया, जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ये कुन की जो गुंजार है,
जी जी,
ये दायरों में गर्दिश करती है,
जाहिर है, देखें ग्लोब की शक्ल में, दायरा लफ्ज जो है ना वो कागज पे बना हुआ दायरा, उस तरह नहीं, देखें ना पानी की सतह पे लहर, आप पत्थर फेंकें तो दायरे बनते हैं ना, लेकिन अगर आप मोमबत्ती जलाएं क्या होता है, रोशनी चारों तरफ फैलती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, हाँ या नहीं। इसी तरह जब कोई बंदा आवाज देता है, जब वो मुंह से आवाज निकलती है तो वो आवाज चारों तरफ फैलती है, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी, तो पूरा ग्लोब बनता है। ठीक हो गया,
जी सर, जी सर, थैंक यू,
वेलकम। जी और कोई, जी और कोई बात। वालेकुम अस्सलाम
भैया, कल पढ़ा था कि तुम्हारे जिस्म के हर अर्गुजा जो है वो जवाब देंगे अल्लाह ताला के आगे, उनको अल्लाह जबान दे देगा, तो ये थोड़ा सा हम समझना चाह रहे थे।
मतलब ये कि देखे ना, जब आपके सामने, आजकल तो आज बड़ा आसान है इसको समझना, ये सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना घरों में, सिक्योरिटी कैमरास, अब अगर फर्ज करें कि एक बंदा मेरे पर्स में से कोई चीज निकाल रहा है और वहां कैमरा लगा हुआ है, अब मैं उसे कहूं कि भाई तुमने निकाली है, वो कह नहीं मैंने नहीं निकाली, तो मैं उसे तस्वीर दिखा दूं कैमरे की, तो क्या होगा कि उसकी जबान नहीं, अब जबान नहीं बोलेगी, उसके हाथ जो कर रहे हैं वो दिखेगा। ये इंसानों को ये सीसीटीवी कैमरे का आइडिया कहाँ से आया, अल्लाह की इन्हीं बातों से, देखें हमने गौर नहीं किया, लोगों ने गौर किया, जिन्होंने गौर किया उन्होंने ऐसी चीजें बना ली। देखे ना, वो हैवानी सतह से ऊपर उठ के जहनी सतह पे तो खेले ना कम से कम। हम क्या कर रहे हैं, हमें कुरान ने ये तीनों दर्जे बताए और कहा, फरमाइश की कि तुमने तीनों दर्जों पे खेलना है, तीनों को बैलेंस के साथ लेके चलना है। ये नहीं कि तुम जिस्म को नजरअंदाज कर दो या जहन को नजरअंदाज कर दो, सिर्फ रूह के चक्कर में पड़ जाओ, या रूह को नजरअंदाज करके सिर्फ जहन में रहो, या जहन और रूह को नजरअंदाज करके सिर्फ जिस्मानी तकाजों की तकमील में लगे रहो। ये सारी बातों का लुबे लुबाब और खलासा क्या हुआ, कहला चाहता है कि आप अपनी तमाम सलाहियतों को इन तीनों दर्जों पे बरतें, शऊर का इस्तेमाल भी करें, इल्हाम का इस्तेमाल भी करें और वही को भी समझें। आसान हो गया ना ये, कितना ये सीसीटीवी कैमरे की मिसाल जो है ये रोजमर्रा का मुशाहिदा है, सबका मुशाहिदा है। कई घरों में तो माशाल्लाह आपने लगे हुए देखे मैंने लोगों के।
ऑफिसर में ऐसा बिल्कुल बंद हो गई थी, लाइन बंद हो गई थी, अब दोबारा मैंने ऑन किया।
कोई बात नहीं जी जी,
तो पीछे का मैंने नहीं सुना।
कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग पे सुन लीजिएगा।
अस्मा के बारे में आपने क्या बताया
कि इस जो अल्लाह ने आपको जी मैं अर्ज करता हूँ, जो आपको अल्लाह ने सलाहियतें अता फरमाई है ना, उनके इस्तेमाल के इल्म का नाम अल्लाह ने इल्मुल अस्मा कहा है। इसम कहते हैं किसी चीज का नाम। अब ये सलाहियतें भी तो एक चीज है ना भाई, अल्लाह की सिफात का इल्म है ना। अल्लाह ने आपके अंदर, मैंने सिमात की मिसाल दी, बसारत की मिसाल दी, अब इसी तरह आपके अंदर तजस्सुस है, ये अल्लाह की सिफत मुहीत का अक्स है। मसलन आप देखें ना, खालिक भी हैं, कैसे, क्योंकि आप इखलाक से काम लेते हैं, तो इखलाक खल्क से है। देखें अल्लाह तखलीक करता है, इंसान क्या करता है, अपनी तस्वीर दूसरे के जहन में बना रहा है, इस तस्वीर को बनाना जो है ये इखलाक कहलाता है। लेकिन अगर आप बा इखलाक होंगे तो क्या होगा, आपकी तस्वीर दूसरों के जहन में अच्छी बनेगी बुरी बनेगी,
अच्छी बनेगी।
तो असल में ये जो इखलाक का लफ्ज है ना, मैनरिज्म, ये सब क्या है, एटिकेट्स, ये सब क्या है, ये तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल है कि दूसरे के जहन में हमारी तस्वीर बने, बनाना। वो एक बनाना केले को भी कहते हैं, बनाना रिपब्लिक बनी हुई है।
जो उन्होंने कह रहे कि रूह आजम के बाद आपको मिलते हैं इल्मुल अस्मा।
जी जी, देखे रूह आजम के दर्जे पे, जब आपका शऊर इस दर्जे पे वाज़े हो जाए कि आपको अल्लाह की बात समझ में आने लगे, जब आप देखे ना, मैंने अर्ज किया कि हम शऊरी दर्जे पे हैं, अभी हमने इल्हाम के जहन के दर्जे पे नहीं है, रूह के दर्जे पे। मैंने इसको आज नए तीन अल्फाज से अर्ज किया कि शऊर, इल्हाम और वही। जब हमें बराह रास्त वही की तरह समझ आएंगी, तभी हम अल्लाह की बात को उस तरह समझेंगे ना जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है। इसी का नाम रूह आजम रख लीजिए। देखे ना, आपके महक, आप एक फर्ज करें सर, एक महकमे में काम करते हैं, महकमे का सरबरा अपना डिप्टी किसको बनाएगा, जो उसकी बात को उस तरह समझा, जिस तरह समझता होगा, जिस तरह वो समझाना चाहता है, हाँ या नहीं। वरना वहाँ चौकीदार भी काम कर रहे, वहाँ ऑफिस बॉय भी काम कर रहे, लेकिन वो उनको नायब तो नहीं कहा। और करें, यानी ये आम जिंदगी की मिसाल है। अब एक ऑफिस है, उसके कई डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कई शोबे हैं, हर बंदा, कोई क्लर्क है, कोई सेक्शन ऑफिसर है, कोई सेक्रेटरी है, एक्सेट्रा, हर बंदे के फराइज हैं। वो उनमें से किसको अपना नायब बनाएगा, जो उसकी बात को उस तरह समझेगा जिस तरह वो चाहता है, हाँ या नहीं? और वो उसका इजहार कैसे करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए, कि जो इन रूल्स को फॉलो करेगा मैं उसको प्रमोशन देता रहूंगा। ये कहते हैं ना। तो गया ये सब सारा निजाम अल्लाह के निजाम का एक हल्का सा अक्स है, जो हमारा दुनियावी निजाम है। ये कहां से आया? भी जाहिर है अल्लाह ने इंस्पायर किया। अल्लाह चाहता है कि आप मादी जोन में रहते हुए जब ऊपर आए। अब इसकी एक मिसाल सुन लें। मिसाल ये है कि देखें, अल्लाह रब्बे करीम ने आपको जब बनाने से पहले ऐलान कर दिया कि जी मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, इन्नी जायलो फिल अर्द खलीफा, जायल बनाऊंगा, यानी बनाना चाहता हूँ या बनाऊंगा, ठीक हो गया, जायल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब जब इस बंदे को बनाया तो अपने कारखाना है, कुदरत के 17 डिपार्टमेंट हैं, उनसे कहा कि इसमें से गुजरो, ये हर डिपार्टमेंट को विजिट करो और उसको सीखो समझो कि वो डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है। अब करते कराते आप 8 डिपार्टमेंट्स देख के 9वें में आए। आलम नासूत ये 9वां स्टेशन है और ये हीन और 3 से बना है। अब आप कीचड़ से बच के अगर निकल गए तो गोया आपने तकवा, इसे तकवा कहते हैं, एहतियात करना, यानी एहतियात से गुजरना, कीचड़ में आलूदा नहीं होना। अब हम क्या कर रहे हैं? कीचड़ में लेटे हुए हैं, मुंह पे अपने पे भी मल रहे हैं, दूसरों पे भी उछाल रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब मैं इस लुथड़ा हुआ इस फेज से, इस कीचड़ वाले कमरे से, इस डिपार्टमेंट से, शोबे से गुजर के जब बाहर निकलूंगा तो वो मुझे CEO बनाएगा? हरगिज नहीं। वो कहेगा तुम्हें तमीज ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कीचड़ से कैसे गुजरना है, तुम किसी को क्या गुजारोगे? तो वो आपको कोई ड्यूटी देगा? अब समझ आ गई कि देखें ये सारा निजाम बड़ी हिकमत के साथ अल्लाह ने वजा की है। अल्लाह ने इसको बड़ी सोच समझ के, हर चीज कैलकुलेटेड है। क्या कहा अल्लाह ने? तुम्हें मेरे निजाम में कोई शिगाफ नजर नहीं आएगा। बार बार देखो तुम्हारी नजर दरमांदा थकी हुई तुम्हारे पास पलट कर आएगी।
अच्छा, जो जो हमने पहले 8 जहां गुजारे हैं उनके बारे में हमें कोई खैर खबर नहीं है।
इसीलिए तो आप इंसान कहलाते हैं। लफ्ज इंसान क्या मतलब है? इंसान का मादा निसी से है। सूरह यासीन में निसिया खलका, ये अपनी तखलीक भूला हुआ है। आप गौर करें कि लफ्ज इंसान जो है कुरान में जहां जहां आया है वहां पे अल्लाह रब्बे करीम ने उसको अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। इन्नल इंसान लकनूत, इन्नल इंसान रब्बे ही लकनूत, इन्नल इंसाना अजूला, इन्नल इंसाना कफूरा, इन्नल इंसाना जलूमन जहूला। और करें, लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, हमने तो इंसान को बड़े अच्छे कवाम से बनाया था। सुम्मा रदद ना हो फी असफल साफिलीन, और गिर गया नीचे से भी नीचे, कीचड़ में गिरा पड़ा। मैंने ये जो कीचड़ की मिसाल दी कुरान के 3 से है। अल्लाह ने हमें इस कीचड़ से गुजारा ताकि हमें पूरा उसका निजाम समझ में आए। हम गौर व फिक्र से ही पैदल हैं, बल्कि न सिर्फ खुद कीचड़ में लुथड़े हुए बल्कि दूसरों पे भी उछाल रहे हैं। अब ये कौन सा तर्ज अमल है? अल्लाह ने मना किया, हम बाजी नहीं आ रहे। अल्लाह कह रहा है तकवा। हजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में क्या इरशाद फरमाया? उन्होंने कहा किसी को किसी पे कोई बर्तरी नहीं है। दुनिया वाले हर बंदा दूसरे से अफजल होना चाहता है। हजूर ने क्या कहा? किसी को किसी पे कोई बर्तरी नहीं है, ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे पे, ना अरबी को अजमी पे ना अजमी को अरबी पे, बर्तरी सिर्फ उसको हासिल है जिसके पास जो तकवा, जो मुत्तकी है, जो तकवा इख्तियार करता है। तकवे का क्या मतलब
है? उसको बर्तरी है बस।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही कहा जा सकता है कि हमने अल्लाह की बात को तो नहीं समझा ना, हमने मुआशरती कदरों को या अपनी बनी हुई सोच को अपना रब और अपना इलाह माना हुआ है। अब ये जो इलाह कहा, इलाह के लफ्ज में दौलत की पूजा भी तो आ गई। ये जो हम दौलतमंद की इज्जत करते हैं इस वजह से कि वो दौलतमंद है और उससे मरूब होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पूजा ही तो कर रहे हैं दौलत की। भाई दौलत इस्तेमाल की चीज है, उससे इस्तेमाल करें। दूसरा कर रहे हैं, आप खुश हो कि वो तो कर रहे हैं ना, कम से कम उसको इतना शऊर तो है। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम उसे बुरा कह रहे हैं, हम उसे हसद कर रहे हैं। इन चीजों से अल्लाह ने मना किया है।
हराम है या हलाल है ये भी नहीं कुछ सोचा।
वो तो फिर देखे ना, जब अल्लाह ने कर्म किया, आपको ये इतनी बात तो समझ आ गई ना कि सारा खेल जहन का है। पैसा किसकी इजाद है? अल्लाह की?
अल्लाह
नहीं, ये तो इंसान की इजाद है। रुपया पैसा किसने बनाया? अल्लाह ने साथ भेजा था आपके दौलत। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके, मेरी बात सुने ना, ये किसने बनाई रुपया पैसा किसकी इजाद है? अकले इंसानी की या अल्लाह की? भाई अगर अल्लाह तख्लीक करता ना रुपया पैसा, तो ये दरख्तों पे लगते नोट। लेकिन ये तो 400-500 साल पहले शुरू हुए हैं, इससे पहले नोट कहाँ थे?
सोना चांदी और हीरे जवाहरात जो जमीन में से निकलते हैं, ये भी तो अल्लाह ताला की देन है
जी। इसकी कीमत किसने लगाई? इंसान ने के अल्लाह ने?
जी वो तो इंसान ने लगाई।
शाबाश, अब बात समझ आ गई आपको। आपने अल्लाह की बनाई हुई एक चीज की कीमत लगाई, अल्लाह की कीमत नहीं लगाई। अल्लाह को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी आप दौलत को देते हैं, हीरों को देते हैं, जवाहरात को देते हैं, सोने चांदी को देते हैं। हाँ या नहीं? बस ये फर्क है। ये फकीरी सोच में ये बात समझाई जाती है। आपने कलंदर शोर किताब में नहीं पढ़ा कि हजूर कलंदर बाबा औलिया ने हजूर मुर्शिदे करीम को एक ज़हनी कैफियत से गुजारा कि वो महसूस कर रहे हैं 48 घंटे लगातार कि कमरे में हूँ जहाँ अलमारियों में सोना चांदी भरा हुआ है। प्यास लगी तो कहा सोना खाओ चांदी पियो, भूख लगी कहा सोना खाओ, क्या हुआ? उस कैफियत से हजूर फरमाते हैं बाहर आने के बाद मुझे किसी के नोट देता था तो घिन आती थी। अब हमें
कदर आ गई ना?
नहीं, कदर आ गई नहीं, असल बात समझ आ गई कि ये इंसान का बना हुआ एक टूल है। देखे ना, जरे मुबादला,
देखे तजारत करके भी तो अपना मुकाम बना सकती है ना।
भाई तजारत को अल्लाह ने हलाल किया है क्योंकि इंसान को देखे तीनों दर्जों पे चलाना है ना। अल्लाह ने कहा खाओ पियो, कहा कि नहीं? कहा कि तजारत करो, रुपया पैसा कमाओ।
अल्लाह के साथ तजारत करें,
अल्लाह के साथ तजारत। अल्लाह ने तो कहा मेरे साथ तजारत करनी है तो मेरे मेरी बात मानना सीखो।
मानना उसकी मखलूक के काम आए, उसकी मखलूक की खिदमत करें, तो ये तो सबसे बड़ी तजारत है ना। वो
सबसे पहले, सबसे पहले खुद आप अपनी खिदमत तो कर लें। अब यहाँ पे ये देखे ना, आधी बात लेके लोग चढ़ दौड़ते हैं। मैं खुद को डेवलप नहीं कर रहा, दूसरे की क्या मदद करूं? अब एक बंदा कीचड़ में, दलदल में डूब रहा है, ठीक है, अब छोटा बच्चा आके उसको पकड़े और उसको बाहर निकालने की कोशिश करे, क्या होगा? अगर बच्चे ने हाथ पकड़ा दिया तो वो तो उसको भी दलदल में खींच लेगा। लेकिन अगर वो बंदा जो किसी को दलदल में डूबने से बचा रहा है, वो इतना तबाना हो, या इतनी अकल रखता हो कि रस्सा बांधे दरख्त के साथ, रस्सा पकड़ के उसकी तरफ फेंके के भाई इस रस्से को पकड़ के ऊपर आ जा, कौन सा तरीका बेहतर है? पहले आपको खुद अपने आप को डेवलप करना है। हम ये चैप्टर भूले हुए हैं, हम दूसरों की खिदमत में जुटे हुए हैं। जरूरी है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुआमुल मसाकिन, खाना खिलाओ इनको, कहा है ना। अगर आप किसी क्या को खाना, गरीब को राशन डाल देते हैं, किसी की फीस भर देते हैं, किसी की बच्ची की शादी हो रही है उसकी शादी के लिए उसे वसाइल कुछ पैसा दे देते हैं। अब्बा ने फरमाया कि ये 10 दुनिया 70 आखरत, यानी इन कामों का अजर दुनिया में 10 गुना है और आखरत में 70 गुना है। और समझ में आई आपको? देखें ये सारी बातें कुरान में वजाहत से बयान हुई हैं, लेकिन जो चीज हमने मिस की हुई है वो ये कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग और अपने आप को ब्लूम करना यानी खिल उठना, वो नहीं सीखा। ये रूहानी सलासल बंदे को ये बताते हैं कि आप तीनों दर्जों पे खेलेंगे, जिस्मानी भी, जहनी भी और रूहानी भी। अगर एक भी शोभा नजरअंदाज हो गया, क्या कहा अल्लाह ने, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखरत हसना, दुनिया में हसनत। हसनत क्या है? किसी काम को खूबसूरत तरीके से सरंजाम देना। अगर आपने दुनिया में नहीं किसी काम को सरंजाम दिया और आखरत का ख्याल रख के नहीं किया, यानी उसके अंजाम का ख्याल रखते हुए किया, वकेना अज़ाबुन नार, तो अगर ये नहीं किया तो आग से निजात नहीं। साफ तो कहा अल्लाह ने, हमने क्या तर्जमा लिया हुआ है? पता नहीं कुछ होगा, हमें क्या पता। ठीक है, काफी हो गया,
काफी हो गया।
चले, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।